उनके सतत केवल ज्ञान का। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। हम सभी लोग अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए दृष्टि की निर्मलता और आत्मज्ञान, इन पर विचार कर रहे हैं। दृष्टि की निर्मलता ही ज्ञान को समीचीन बनाती है, और ज्ञान समीचीन वो है जो कि हमारे आत्मकल्याण में निमित्त बनता है, कारण बनता है। जो ज्ञान आचरण बन जाए वही ज्ञान श्रेष्ठ माना जाता है, वही ज्ञान प्रशंसनीय है। इस तरह हमने बहुत प्रकार से आत्मज्ञान के उपायों को कैसे अपने जीवन में लाना चाहिए इस पर विचार किया है। उस आत्मज्ञान की जो महिमा है, सम्यक ज्ञान की जो महिमा है, उसके बारे में भी हमने विचार किया है। उसे समझने की पद्धति क्या है, इस पर भी हमें विचार करना चाहिए। और इतना ही नहीं, हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए इस पर भी विचार करना चाहिए। आचार्य भगवंतों ने ज्ञान प्राप्ति के लिए 8 बातों का ध्यान रखना चाहिए ऐसा कहा है। सबसे पहले, जब भी हम प्रयोजनभूत 7 तत्वों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उत्सुक हों, हम प्रयोजनभूत 7 तत्वों को दर्शाने वाले ग्रंथों का ठीक ठीक उच्चारण करना सीखें, जिसे कहते हैं व्यंजनाचार। जो स्वरूप आचार्य भगवंतों ने परंपरा से तत्व का लिखा है, उसे उन्हीं की भाषा में हम ठीक से उच्चारित करें। आज बहुत सारे अनुवाद और ट्रांसलेशंस हैं, वो मूल नहीं है। सबसे पहले जो मूल ग्रंथों में आचार्य भगवंतों ने प्राकृत और संस्कृत भाषा में हमारे कल्याण के लिए प्रयोजनभूत 7 तत्वों का वर्णन लिखा है, उसका ठीक ठीक उच्चारण करना सीखें। बड़े बड़े संघों में, मुनि संघों में पहले उच्चारणाचार्य नाम से एक पद भी दिया जाता था, जिन महाराज का शब्दों का उच्चारण स्पष्ट होता था, वे अन्य साधु जनों को स्पष्ट उच्चारण करके बताते थे, सुनाते और समझाते थे। उच्चारणाचार या व्यंजनाचार, ये ज्ञान के लिए सबसे पहली जरूरत है। आज इस प्रक्रिया को हम ज्यादा महत्व नहीं देते हैं, पर लिखा है आचार्य भगवंतों ने, मैंने इसका उदाहरण कटनी में देखा। हम सामायिक करने बैठ जाते थे, हमारी आधी सामायिक हो पाती थी, उतने में एक अम्मा जी आती थीं और वहीं मंदिर में और शास्त्र जी की अलमारी से शास्त्र निकालकर स्वाध्याय करने बैठ जाती थी, और अपना स्वाध्याय पूरा करके फिर मुझे प्रणाम करके चली जाती थी। एक दिन मेरे मन में आया कि इनकी तो बड़ी लगन है पढ़ने की, पूछें क्या पढ़ रही हैं। तो पूछ लिया, अम्मा जी आप किस चीज का स्वाध्याय करती हैं इतनी तन्मयता से? तो कहा, महाराज हम षटखंड आगम धवला जी का स्वाध्याय कर रहे हैं। मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ, प्राकृत और संस्कृत दोनों भाषाओं में वीरसेन आचार्य महाराज, जो कि अत्यंत ज्ञानवान थे, इस पंचम काल में कलिकाल सर्वज्ञ की उपाधि दी गई थी उनके लिए, उन्होंने गंगा जमुनी भाषा लिखी। संस्कृत प्राकृत दोनों में एक साथ लेखन करना, ये दोनों भाषाओं पर समान अधिकार रखने वाले से ही संभव है। उसे ये स्वाध्याय में कैसे समझ पाती होंगी अम्मा जी, 70-75 साल की उम्र थी उनकी लगभग। मैंने कहा आपके समझ में आ जाता है? अरे महाराज समझ में तो कुछ नहीं आता। अरे आपके समझ में नहीं आता फिर भी आप इतनी तन्मयता से पढ़ती हैं? बोले महाराज मैं क्या समझूं इतनी बड़ी बड़ी बातें, मैं तो अज्ञानी हूं, लेकिन मुझे ये लगता है कि मेरे उपकार के लिए आचार्य भगवंतों ने अपना समय निकाल कर जो शब्द लिखे हैं कम से कम उसे इस मुख से उच्चारण कर लूं, इन कानों से उन शब्दों के उच्चारण की ध्वनि तो सुन लूं, और इन हाथों से वे पृष्ठ जिन पर की वह ज्ञान अक्षरों में लिखा गया है उसे स्पर्श तो कर लूं। इसी भाव से मैं रोज अत्यंत तन्मय होकर के और ग्रंथ का सिर्फ पाठ करते हैं, सिर्फ पढ़ रहे हैं, ठीक ठीक उच्चारण करना, समझ में क्या आ रहा है? कुछ नहीं, बस समझ में इतना ही आ रहा है कि मेरे कल्याण के लिए लिखा गया है, और जो लिखा है सो वह आचार्यों ने सर्वज्ञ की जैसी वाणी है वैसा ही लिखा है, ऐसा अत्यंत दृढ़ श्रद्धान है। उस दृढ़ श्रद्धान से और भावों की निर्मलता से जो कुछ भी पढ़ा जा रहा है उसी धवला जी में लिखा है कि कदाचित अल्प ज्ञानी हो लेकिन तत्वाभ्यास की अत्यंत रुचि होने से वह वर्तमान में उसका ठीक अर्थ ना भी समझ पाए, विस्मृत हो जाए, तब भी उसका यह तत्वाभ्यास आगामी जीवन में केवल ज्ञान का कारण बनता है। तब मुझे लगा कि हाँ ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि सिर्फ काय महाराज हिंदी में पढ़ सकत, पढ़ लो, जिस भाषा में लिखा हुआ है आचार्यों ने उस भाषा को सीखें और उस भाषा में उसे ठीक ठीक उच्चारण करें, किसी और से उच्चारण करवाने के लिए और समय निकालें, तब ये व्यंजनाचार नाम का पहला ज्ञान का अंग है। ये जैसे सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं ऐसे ही ये ज्ञान के 8 अंगों में से पहला अंग है। और फिर कहते हैं अर्थाचार, जैसा उस ग्रंथ में उस शब्द का अर्थ है सो उस ग्रंथ के संदर्भ में उसका ठीक ठीक अर्थ निकालना, अनेकांतात्मक अर्थ निकालना। जैसे उदाहरण दिया है कि सेंधव का अर्थ सेंधा नमक भी होता है और सेंधव का अर्थ घोड़ा भी होता है, तो भोजन की थाली पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति कहे कि सेंधव आने सेंधव लाओ, तो क्या लाके खड़ा करेंगे? घोड़ा लाके खड़ा करेंगे, नमक लाएंगे। वहां उस संदर्भ में तो सेंधव का अर्थ नमक ही लेना हो, और जब वो कहीं यात्रा के लिए बाहर जा रहा हो और कहे सेंधव लाओ तो नमक की डली लाके नहीं देंगे, घोड़ा लाके खड़ा कर देंगे कि आप इस पर बैठ कर। ठीक ऐसे ही आचार्य भगवंतों ने जिस शब्द का जो अर्थ जहां प्ररूपित किया है उस अर्थ को ठीक ठीक अनेकांतात्मक रूप से समझना, जानना। जैसे कि अगर अष्टपाहुड़ में आचार्य कुंद कुंद स्वामी के चरणों में बैठते हैं तो वो कहते हैं कि दंशन मूलो धम्मो,
दर्शन ही धर्म का मूल है और वे ही आचार्य भगवंत, अगर हम उनके चरणों में जब वे प्रवचन सार जी का प्ररूपण कर रहे हैं तब उनके चरणों में बैठे तो वे ही कहते हुए पाए जाते हैं कि चारित्तम खलुधम। एक ही आचार्य भगवंत अपने अलग अलग दो ग्रंथों में धर्म का मूल दर्शन और वहां चारित्तम खलु निश्चये न चारित्रम एव धर्म ऐसा कहते हुए पाए जा रहे हैं। आखिर बात क्या है, कहना क्या चाह रहे? तो उसी ग्रंथ में आगे जाकर के देखें कि दर्शन का अर्थ अष्टपाहुड़ में आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने क्या लिया है। तो कहते दर्शन का अर्थ है वीतराग मुद्रा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों जिसने धारण किए हैं, ऐसी जो जिनेन्द्र भगवान की मुद्रा धारण करने वाले जो भी पंच परमेश्वरी हैं वे सब दर्शन हैं। दिगंबर मुद्रा दर्शन है, वही धर्म का मूल है, ऐसा लिखा। वहां दर्शन के मायने जिन मुद्रा है वीतराग मुद्रा है। यथाजात निर्विकार अवस्था, बालकवत अवस्था, पांचों पापों से, पांचों इंद्रियों के विषयों से अनाशक्त हैं, पांचों पापों से विरक्त हैं, वो अवस्था है, वो दर्शन है, वो है मूल धर्म का। और यहां चारित्तम खलु धम्मो, धम्मो जोसो समोत्ति नित्यो मोह खो विहीनो परिणामो अपनो हूं समो। वह जो चारित्र है वो वास्तव में क्या चीज है, कैसे? कहते कषायों के अभाव का नाम चारित्र है। सो कषायों के अभाव में जो समता भाव उत्पन्न हुआ है वही चारित्र है। और भैया कषायों का अभाव तो क्रम से होता अनंतानुवंधि जाति प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान, ये 12 कषायें जाने के बाद जो है चारित्र आता है। इसलिए चारित्र ही धर्म का मूल है, अर्थात सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों से समन्वित अवस्था ही है। यहां भी वही अर्थ है लेकिन दो शब्द अलग अलग लिखे हैं, अनेकांतात्मक अर्थ निकालना पड़ेगा। जिस संदर्भ में जो अर्थ कहा गया है वहां ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले अनिवार्य है कि हम अर्थाचार का ठीक ठीक जैसा लिखा है वैसा भाव समझ करके ग्रंथ तो पढ़ने वाले बहुत लोग हैं। आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए द्रव्य श्रुत का आलंबन लेना तो अनिवार्य है, लेकिन द्रव्य श्रुत को कैसे आत्मज्ञान में निमित्त बनावें ये सीखना बहुत जरूरी है। उसके लिए आचार्य भगवंत कह रहे हैं। और उभयाचार कहते ठीक उच्चारण करना शब्द का और उसका ठीक अर्थ निकालना, ये दोनों चीजें एक साथ हों तब ये एक अलग से अंग ही रख दिया। उभयाचार, व्यंजनाचार अर्थाचार और तदुभयाचार, इन दोनों के का ध्यान रख करके ही ग्रंथ का पारायण करना, तब जाकर के आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी। इतना ही नहीं पूरे सम्मान के साथ पढ़ना, पूरी विनय के साथ पढ़ना। पहले लोग जब शास्त्र जी सभा में आते थे तो अपने स्थान पर खड़े होकर शास्त्र की विनय करते थे। इतना ही नहीं जो शास्त्र जी लेकर आते थे वो अपने माथे तक ऊंचाई पर शास्त्र जी को ला करके फिर विराजमान किया करते थे। अर्थात शास्त्र को और कही गई वाणी को, उपदेश को सिर माथे रखना, अत्यंत आदर पूर्वक पढ़ना, पढ़ते समय आदर भाव बना रहे। हमने कई स्थानों पर देखा कि यहां तत्व का उपदेश चल रहा और कौ वहां पर सभा में पीछे अपनी किताब खोले बैठे पढ़ रहे, ऐसा भी देखा, यहीं पर भी देख लिया था एक दिन। इसमें कोई बुरा मानने के लिए नहीं कह रहा हूं, अज्ञानतावश प्रमादवश ऐसा हो सकता है, होता है। कहते नहीं, जिस समय तत्व का उपदेश चल रहा है तब उस समय अन्य किसी कार्य में नहीं लगना, यही विनय है। हम दूसरी चर्चा वार्ता में लग जावें तो वह अविनय होगी उस उपदेश की। तो पूरे विनय के साथ में ज्ञान को प्राप्त करना जितना शयोपसम है, जैसे ही ग्रंथ पढ़ते पढ़ते ये लगने लगे कि क्या लिखा इसमें, कैसा लिखा, बंद कर दो। अपनी हैसियत उतनी नहीं है कि अपन वो चीज ठीक समझ सकें, इससे पहले कि उसके बारे में कोई मन में संशय इत्यादि आवे, सरल सी चीज पढ़ लो। ये कठिन बारीक चर्चा समझ में नहीं आ रही है, मन खराब मत करो, अभिनय होगी ग्रंथ की। नहीं समझ में आने पर क्या विचार करता है जीव, जो वास्तव में आत्मज्ञान प्राप्त करने जा रहा है, विचार करता है कि देखो तो मेरा कितना अल्प ज्ञान है कि मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही। आज तो अपन ऐसा कह देते कि हमें तो सब मालूम है, जो ये ही में नहीं है ठीक, ये जो बता रहे हैं वो ठीक नहीं है, हमें तो ठीक मालूम। हमारे मन में कभी ये नहीं आता कि हो सकता है कि मुझे जो है ठीक मालूम ना हो, शास्त्र में जैसा लिखा है, जो कहा जा रहा उपदेश में, वही ठीक जान पड़ता है। मैं एक बार पुनः अपने जाने गए पर विचार करूं तभी ये ज्ञान की विनय होगी, क्योंकि मुझे तो जो सच्चाई है उससे मतलब है, सच सो मेरा है, मेरा सो सच है, ये तो दुराग्रह है। मुझे तो सच को प्राप्त करना है, मुझे तो अपने आत्म कल्याण के लिए जो प्रयोजनभूत तत्व है उनका अभ्यास करना है, ये तो जो कथा है वो आक्षेपनी विक्षेपनी कथा से थोड़ों कल्याण होता है। आक्षेपनी विक्षेपनी कथा तो हार जीत पर्यंत चलती है, ये तो धर्म कथा है, धर्म कथा तो तत्व निर्णय पर्यंत चलती है, मुझे तो तत्व का निर्णय करना है। ऐसा विचार करके और अत्यंत विनय पूर्वक हमने जिनेंद्र वर्णी के जीवन की घटना जो वाचना के समय की थी वो तो आपको बताई ही थी। ठीक उसी तरह से जब आचार्य महाराज हम लोगों को मूलाचार पढ़ा रहे थे इसरी में 1983 के अंदर, तब भी ऐसी ही बात आई थी। वहां भी किसी शब्द पर और बात अटक गई, जब थोड़ी देर में ध्यान आया कि वर्णी जी बता सकते, उनने तो कोश लिखा है, तब उनसे पूछे जाने पर ही उन्होंने अत्यंत विनय पूर्वक और उस शब्द का अर्थ बताया, और ये कह करके कि मैं अज्ञानी आपके सामने क्या इस बारे में बिना पूछे बोलूं। वास्तव में ज्ञान की विनय तो वही है, ऐसे पूरे विनय के साथ अपन ज्ञान हासिल करें तो ये विनयाचार। फिर कहते बहुमान आचार, बहुमान और विनय में क्या फर्क है, तो कहते शास्त्र के अध्ययन करते समय मन वचन काय की एकाग्रता रखना, कंसंट्रेशन, वहां रिस्पेक्ट है यहां कंसंट्रेशन है, यहां वहां के मिथ्या विचार नहीं आना चाहिए, यहां वहां दृष्टि नहीं होनी चाहिए। मैं पूरे मन वचन काय की एकाग्रता से, और जब भी शास्त्र का उपदेश होता हो, चाहे शास्त्र मैं स्वयं पढ़ता हूं कोई मुझे पढ़ाता हो, उन क्षणों में मेरी मन वचन काय की एकाग्रता बनी रहे, तभी मुझे आत्मज्ञान हासिल हो सकेगा। भैया किताब पढ़ लेना अलग चीज है और ग्रंथ का पारायण करना बिल्कुल अलग चीज है। शास्त्र ग्रंथ पुस्तक और किताब ये सब चीजें एक नहीं है। शास्त्र के द्वारा दिया गया उपदेश शास्त्र है, और निर्ग्रंथ के द्वारा जो दिया गया ज्ञान है वो ग्रंथ है, और जो सामान्य सबके द्वारा लिखी गई है, पुस्तक कहो, पुस्तकर्म से बनी हुई है, जो कि बाइंड अप की गई है इसलिए पुस्तक है, किताब शब्द उर्दू शब्द है, ये जो है किताबत शब्द से बना और वो पुस्त शब्द से डेवलप होके पुस्तक बना है, वो तो सामान्य व्यक्ति के द्वारा रचित है। शास्त्र तो शास्ता के द्वारा, कौन है शास्ता, आपते नोच्छिन्न दोषेन सर्वज्ञेन गवेशिना भवितव्यम नियोगेन ना अन्यथा याप्तता भवेत, ऐसे आप्त और शास्त्रा के द्वारा लिखा गया शास्त्र है, उसके अध्ययन करने से पहले द्रव क्षेत्र काल और भाव की शुद्धि अनिवार्य है। तब जाकर के एकाग्रता होगी, जहां कहीं बैठ करके नहीं होता। क्षेत्र की शुद्धि होती है, जिस चाहे काल में नहीं होता, काल की शुद्धि पूर्वक होता है। और भावों की शुद्धि तो है ही, और पहले तो लोग शास्त्र की गद्दी पर बैठते थे तो नहा धो करके उसके अलग वस्त्र धारण करके ही शास्त्र का स्वाध्याय करते थे। अल्प ज्ञान भी होता था, लेकिन आचरण अत्यंत समृद्ध होता था। देख लें आप पुराने शास्त्र के वाचने वालों को और वर्तमान की पीढ़ी को, दोनों में बहुत फर्क हो गया। वो फर्क अपन को उनके जीवन में भी समझ में आता है। भले ही पहले अल्प ज्ञान था, चार बातें ऊंची, उसी में से बांच के उल्था कहो तो उल्था कर दो, संस्कृत को उल्था करके बता दो। तुम तो संस्कृत पढ़ जाओ और हिंदी करके बता जाओ, उल्था कर दो ट्रांसलेटर की तरह, अपनी तरफ से और कछु ने मिलइयो ने घटइयो ने बढ़इयो, इतना ही कर देते थे और शुद्धि पूर्वक करते थे। ये सब बहुमान कहलाएगा, ये बहुमान आचार है। और फिर कहते उपधान। उपधान के मायने हैं कि जब तक इस शास्त्र का स्वाध्याय करूंगा, तब तक अपने पांच इंद्रियों के विषयों में से कोई ना कोई चीज का त्याग कर दूंगा। इस ग्रंथ की समाप्ति तक कोई ना कोई चीज जो मेरे लिए प्रिय है, उसका ही त्याग कर दूंगा। अभी लोग तत्थार सूत्र का स्वाध्याय कर रहे हैं, एक बार यहां पर भी कर चुके हैं, अभी जब मैं आई था तीन दिन, अभी फिर करेंगे। उनमें से दसों में से अधिकांश लोगों का त्याग है। जब तक तत्वार सूत्र का पूरा अध्ययन नहीं होगा, एक बार ही भोजन करेंगे। ऐसे नियम लेकर के फिर उस शास्त्र जी का स्वाध्याय किया जाता है, क्योंकि चारित्रवान को ही ज्ञान शोभा देता है। इसलिए कम से कम जब तक मैं ज्ञान हासिल कर रहा हूं तब तक ही सही, उसके बाद अगर मुझे सचमुच में ज्ञान हो जाएगा तब तो फिर तो छूट ही जाएगा, आसक्ति तो घट ही जाएगी। उस दौरान भी आसक्ति घटनी चाहिए। सामान्य रूप से भी नीति वाक्य लिखा हुआ है कि विद्यार्थिनो सुखार्थिनो कुतो विद्या और विद्यार्थिनो कुतो सुखा। जो सुखपूर्वक जीवन जीता है, भौतिक सुखों में व्यस्त है, उसको ज्ञान हासिल नहीं हो सकता। और जो विद्यार्थी है ज्ञान हासिल करने वाला, उसको सुख की जरूरत ही नहीं लगती। उसके लिए सुख क्या चाहिए, वो तो बहुत मुश्किलों में और उस ज्ञान को हासिल करेगा। इसलिए लिखा कि हम उपधान अर्थात त्याग पूर्वक ही और स्वाध्याय ग्रंथ का करें और क्रम पूर्वक करें। कहीं से कुछ पढ़ लिया, कहीं से कुछ पढ़ लिया, इसका नाम स्वाध्याय नहीं कहलाएगा भैया। चार लाइनें एक किताब की, चार लाइनें वो पत्रिका की, चार लाइनें ये भाग में से पढ़ ली, नहीं। एक जो आचार्य प्रणीत ग्रंथ है, उसे ठीक वैसा ही जैसा क्रम से लिखा हुआ है वैसा पढ़ लें। और आखिरी में कहते अनिन्नव आचार, ग्रंथ और ग्रंथकर्ता का नाम श्रद्धा से लेना, कभी भी उनके नाम को छिपाना नहीं। उनका नाम ऐसा भी नहीं लेना कि वो ऐसा कहते हैं, नहीं। आचार्य कुंद कुंद आचार्य महाराज के चरणों में बैठो तो वो हमने ऐसा हम पर उपकार करके और हमसे कहते हैं। वो हमारे साथ पढ़ने वाले थोड़ू हैं कि उनका हम अपने मित्र की तरह नाम ले। वो तो श्री गुरु हैं, वो तो हमें तत्व का उपदेश स्वयं अपने जीवन में धारण करके और हम पर कृपा करके हमारे निवेदन पर जितने ग्रंथ लिखे आचार्य भगवंतों ने, किसी न किसी साधक को निमित्त बनाकर शिवभूति नामा मुनि महाराज के लिए प्रवचन सार जी का उपदेश देता, ऐसा कह करके और फिर उसकी शुरुआत करते हैं। पूछने पर ही वे उपदेश देते हैं। जिज्ञासु मुमुक्षु सामने हैं, उसे देख करके उसके आत्म कल्याण के लिए वे उपदेश देते हैं। ऐसी हमारी परंपरा रही भैया, तो कहते कि अपने ग्रंथ का और गुरु का नाम जिससे कि हमने ज्ञान हासिल किया है कभी छिपाना नहीं। ये भाव मन में ना आ जावे कि मैंने अपने शयोपसम से ये हासिल किया है। सो शयोपसम तो एता शयोपतम, तो सब जीवों के होवे के सात तत्व जो प्रयोजन भूत हैं वाका ज्ञान कर सके हैं, लेकिन बिना श्री गुरु के सात तत्वों का ज्ञान होता नहीं। एता शयोपसम तो सब जीवों के है भाई, के सात तत्व जो प्रयोजन भूत हैं उनका ज्ञान हो जावे, इतना तो सबके शयोपसम है। लेकिन जब श्री गुरु के चरणों में बैठते हैं, वे हमें प्रेरित करते हैं कि हाँ तुम्हें उस आत्म तत्व को प्राप्त करना है, तब उनसे प्रेरणा पाकर की ओर हमारा वो शयोपसम जो संसार की बातों को जानने में उलझा हुआ था, वो अपने आत्म कल्याण की बात जान करके सुलझ जाता है। ये इसलिए उनका उपकार है, उसको हम नहीं भूलें। हमेशा ये याद रखें कि मेरा शयोपसम क्या कर लेता। शयोपसम से तो मैं हो सकता था दुनिया भर का प्रपंच सीख जाता और सीख ही रहे, लेकिन आत्म कल्याण की बात सीखने के लिए तो मुझे ये उपकार है श्री गुरु का कि वे हमें अपने आत्म कल्याण की इतनी बातें हजारों वर्ष पहले और लिख करके चले गए हैं, जो आज के संदर्भ में भी अप टू डेट है, आज भी जीवों के आत्म कल्याण में निमित्त है। ऐसा हमारे मन में एक श्रद्धान उनके प्रति, एक सम्मान उनके प्रति होना चाहिए। अहंकार नहीं आना चाहिए कि मेरे शयोपसम से मैंने ये ज्ञान हासिल किया है। एक आचार्य महाराज घटना सुनाते किसी मुनि महाराज की, कि उनको बहुत ज्ञान का शयोपसम हुआ। ऐसा हुआ कि गुरु से भी अधिक उनके लिए ज्ञान हो गया। बारीक से बारीक चर्चा उनको ऐसे आने लगी कि लोग सुन करके दंग रह जाते थे। लोग उनकी बहुत प्रशंसा करने लगे, मुंह पर ही प्रशंसा करने लगे। बहुत खतरा है भैया मुंह पे प्रशंसा करने, पीठ पीछे निंदा करना और मुंह पे प्रशंसा करना सबसे ज्यादा, हाँ सबसे ज्यादा पतन का कारण है, सामने वाले का भी और खुद का भी। इससे बचना हमेशा। लैग पुलिंग, बैक बाइटिंग, दीज आर टू बैड हैबिट्स। विशेष रूप से नहीं कहना चाहिए, अपन लोगों की है, दूसरे की का कहें अपनी कहें, कि पीठ पीछे जो है बुराई करना और सामने सामने प्रशंसा करना, और आगे को बढ़ रहा हुए तो उसको पीछे खींच देना। तो खूब प्रशंसा उनकी होने लगी। तो प्रशंसा होने से बहुत विरला कोई साधक होवे कि प्रशंसा होवे और फूल के कुप्पा न हुए। बड़ी साधना चाहिए भैया, छोटे मोटे जीव तो जो है उस प्रशंसा में ही फूल करके अपना पतन कर लेंगे। सो ऐसा ही हुआ, उनको ऐसा लगने लगा कि मेरा ज्ञान बहुत श्रेष्ठ है। सो पहले तो कहते थे कि ये ज्ञान मैंने अपने गुरु से प्राप्त किया है, अब जब उनने सोचा कि मेरा ही ज्ञान इतना ज्यादा है, कई लोगों ने तो यहां तक कह दिया कि आपके गुरु से भी आपका ज्ञान अत्यंत ज्यादा है, बस आ गई बात मन में। सो अब कोई पूछता था कि ये ज्ञान कैसे आपने इतना ज्ञान प्राप्त किया, कहते मैंने अपने पुरुषार्थ से, मैंने अपने स्वाध्याय से निरंतर मैंने अभ्यास किया, इसलिए मुझे हो गया। अब जैसे ही ऐसा भाव उनके अंदर आया, कहते कि कंचन के समान उनकी देह थी, धीरे धीरे वो देह उनकी और काली पड़ने लगी, जैसे झुलस गया हो। अंतरंग में क्रोध भी झुलसाता है, मन भी चेतना को झुलसाता है भैया, जी सब चीजें ही चेतना को झुलसाने वाली हैं। शरीर को तो अकेली बाहर की गर्मी झुलसाती है, ये जो भीतर की कषायों की गर्मी है वो चेतना को भी मुरझा देती है, म्लान कर देती है। सो उसके परिणाम स्वरूप कर्म का बंध ऐसा हो गया कि शरीर का वर्ण ही उनका काला पड़ने लगा। हालांकि ज्ञान तो उनका सही था, थोड़ा अहंकार आने से ऐसा हो गया था। सो जैसे ही उन्होंने देखा कि ये शरीर निस्तेज होता चला जा रहा है, क्या कारण हो सकता है, ज्ञान तो था ही, एक दिन सामायिक में विचार आया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने अपने ही गुरु का नाम छिपा लिया और मैं अहंकारी हो बैठा कि मैंने ज्ञान हासिल किया। अरे धिक्कार है मुझे, ऐसी अपनी मन ही मन निंदा करने लगे। अब जो आता था उसी से कहते थे कि धिक्कार है मुझे, कैसा ज्ञान मैंने इतना हासिल किया और श्री गुरु को भूल गया। उसी जीवन में आचार्य महाराज ने सुनाया कि जहां एक तरफ देह कंचन की थी और काली पड़ गई थी, उनके भाव बदलते ही पुनः कंचन की देह हो गई ज्यों की। ये उदाहरण है। हमारे अपने जीवन में भी अगर अपन देखें तो बिना मन खराब हुए ऐसी बातें होती कहां है। अपन ने जिससे ज्ञान हासिल किया है उसके प्रति मन में श्रद्धा तो आएगी ही, उसके प्रति मन में आदर का भाव आए बिना नहीं रहेगा। अगर नहीं आता है तो इसका मतलब है कि मेरे मन में दुर्भावना आ गई है, मेरा ज्ञान अब धीरे धीरे और आवृत होने की तरफ बढ़ रहा है। इसलिए हमेशा इन 8 बातों का ध्यान रख करके ही अपन ज्ञान हासिल करें। आचार्य भगवंतों ने हमें जो धर्म का उपदेश दिया वो 4 प्रकार से उसके प्ररूपण की पद्धतियां अपनाई कि सब श्री गुरु तो सब जीवों का उपकार चाहे हैं, सो जिसे जिस पद्धति से धर्म में रुचि उत्पन्न होवे सो वही पद्धति उसके लिए योग्य है, उसके लिए वही पद्धति श्रेष्ठ है। सो 4 पद्धतियां प्ररूपण करने की हैं, 4 प्रकार का ज्ञान नहीं है, 4 अनियोग तो कथन करने की 4 पद्धतियां हैं। सो 4 अनियोगों के माध्यम से प्रथमम करणम चरणम द्रव्यम नमः शास्त्राभ्यास, शास्त्र का अभ्यास इन 4 पद्धतियों के द्वारा सब जीवों के लिए बता दिया कैसी हैं वो पद्धतियां ज्ञान की। कहते प्रथमान योग की पद्धति कैसी है, प्रथमान योग मर्था ख्यानम चरितम पुराणम अपि पुण्यम बोधि समाधि निधानम बोध अति बोधा समीचीना। आचार्य समनभद्र स्वामी के चरणों में बैठते हैं तो वे 4 अनियोगों का ऐसा सुंदर स्वरूप बताते हैं कि प्रथमान योग तो वो है जिसमें कि हम 4 अनियोगों की पद्धति पर अपन अलग अलग विचार करेंगे। प्रयोजन 4 पद्धतियों का एक ही है कि जीव जैसे बने तैसे धर्म के मार्ग पर लगे। सो प्रथमान योग में संसार की विचित्रता, पुण्य पाप का फल और जो महापुरुष हैं उनकी प्रवृत्ति आदि का ऐसा वर्णन किया जिससे कि जीव जो है और पाप से बच करके धर्म मार्ग में प्रवृत्त हो जाता। प्रयोजन उतना ही है। और कथाएं इत्यादि इसलिए उसमें प्ररूपित की गई कि ये संसारी जीव लौकिक बातों में ही रुचि लेता है। सो लोक में प्रवृत्त जो कथाएं हैं उनसे तो संसार ही बढ़ता है, लेकिन यदि महापुरुषों की भी कथाएं हमारे जीवन में सुनाई जाएं तो उन कथाओं में मन लग जाता है और मन लगता है सो कथाओं में पाप का वर्णन, पाप करने से क्या हुआ और धर्म करने से क्या हुआ, ये सब सुन करके जीव के मन में पाप से भय उत्पन्न होता है और धर्म में रुचि अपने आप जागृत हो जाती है। सब जीव बारीक चर्चा तो समझने सके हैं सो कथा में ही उनका मन रम जाता है, सो उतनी देर के लिए वे पापों से बच जाते हैं। इस तरह से धर्म के मार्ग पर लगाने का ये प्रथम अवस्था में सबसे योग और श्रेष्ठ अनियोग माना गया है। प्रथमम अव्युत्पन्नम अप्रतिकम ऐसा लिखा हुआ है, जो प्रथम अवस्था वाला है मिथ्या दृष्टिम। हाँ, प्रथमम मिथ्या दृष्टिम अप्रतिकम अव्युत्पन्नम और प्रतिपाद्यम आश्रित प्रवर्तः अनियोग अधिकारः सा प्रथमानियोग। जो एक मिथ्या दृष्टि जीव है, जिसके कोई व्रत नियम संयम नहीं है, जो अभ्युत्पन्न है अर्थात जिसकी बुद्धि उतनी नहीं है अभी प्रारंभ में, वह अल्प ज्ञान जिसके है अभी, उसके लिए भी उपकार करने वाला है यह प्रथमानुयोग। इसलिए इसका नाम ही प्रथमानुयोग, प्रथम अनियोग है। ऐसे जीव का भी कल्याण, और कोई जीव जिसको तत्व का निर्णय भया और पीछे इस अनियोग का अभ्यास करे तो पाखों सारी बातें उदाहरण स्वरूप भासे हैं। अगर कोई तत्व ज्ञानी होकर के फिर प्रथमानि योग ग्रंथों को पढ़े तो वह सारी चीजें जो शुभोपयोग शुद्ध उपयोग और अशुभ उपयोग की चर्चा पड़ी थी अध्यात्म ग्रंथों में, सो उसके सारे उदाहरण इसमें दिखाई पड़ते हैं। जो पुण्य और पाप का फल ऐसा होता है वो सब इसमें दिखाई पड़ने लगता है, सो सब ये उदाहरण भाष्य है। और इसमें जो कथाएं लिखी हैं उनको किस्सा गोई ने समझना, उनको जो है किस्सा कहानी ने समझना। कह रही जी तो किस्सा कहानियां सुना रहे महाराज, तो किस्सा कहानी सुनाऊ, ये किस्सा कहानी नहीं है, इनसे संसार नहीं बढ़ता है, इनमें तो जो यथार्थ वर्णन है वो किया हुआ है, महापुरुषों के जीवन चरित्र का इसमें वर्णन किया हुआ है। इसलिए ये कथाएं यथार्थ भूत हैं, इनका प्रयोजन यथार्थ होने के कारण ये यथार्थ है। जैसे कि जिस चीज की प्रमुखता है उस चीज का बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया जाता है। जीवनधर कुमार ने नमोकार मंत्र सुनाया मरते हुए एक कुत्ते को और स्वर्ग पहुंच गया, सो स्वर्ग तो वो अपने अन्य कर्मों के उदय से गया, लेकिन नमोकार की प्रमुखता है मूर्खता बताने के लिए उसमें कथा में वैसा ही वर्णन किया। सीता जी के शील की महिमा बताने के लिए और अग्नि जल रूप हो गई, सो हुई तो वह जैसी होनहार थी वैसी हुई, जैसा कर्म का उदय था पुण्य पाप सो वैसी हुई, लेकिन वर्णन तो शील के महत्व का है, इसलिए उस वर्णन को दर्शाने के लिए तो इसको झूठा न समझना, क्योंकि प्रयोजन तो साचा है, प्रयोजन तो इतना ही है कि जीव जो है धर्म में प्रवृत्त हो। ऐसी प्रथमा ने योग की व्याख्या करी है भैया, और इतना ही नहीं प्रथमा ने योग में पढ़ करके और वैराग उत्पन्न होता है अपार वैभव चक्रवर्ती का, पढ़ते पढ़ते और क्षण भर के अंदर, और जब उन्हें वैराग हुआ तो अपार वैभव छोड़ के चले गए। अपनों तो एक टूटो सो मकान जो चुंवत है और चार पैसा है नहीं है वो नहीं छोड़ो जात, और वहां पर ऐसी चर्चा पढ़ करके अत्यंत वैराग हो जाता कि मेरी आशक्ति कैसी है छूटती नहीं, उनकी कैसी अनाशक्ति है कि अपार वैभव छोड़ करके चले गए। पढ़ करके मन गदगद हो जाता, रोमांचित हो जाता, उसमें विशुद्धि बढ़ जाती है। इसके लिए है धर्म की महिमा सुनकर और पापी जीवों की का कैसे पतन होता, कैसे उनकी निंदा होती है ऐसा जानकर धर्मात्मा को अत्यंत धर्म में उत्साह जागृत होता है। जब देखो धर्मात्मा की चर्चा सुनते कि ऐसा धर्म किया, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हुए, उन्होंने लिखा अपने एक कहानी लिखी उन्होंने कि मैं एक बार एक कोई चित्र देखने गया, चित्र सिनेमा में चित्र कहती चित्र देखने, अब तो अंग्रेजी में मूवी कहते उसको, मूवी देखने थिएटर में जाए। अब पहले के जमाने में तो उन्होंने लिखा कि हम एक चित्र देखने गए, अब चित्र देखने गए सो सिनेमा में, वहां पर बोले पूरा हाल खचाखच भरा हुआ था, बहुत भीड़ थी, सुनते थे बहुत अच्छा कोई चित्र आया है, तो सब देख रहे थे। अब उसमें था कुछ भी नहीं विशेष, उसमें यही था कि एक ईमानदार था एक बेईमान था, दोनों में से कोई कभी जीतता था, कभी ईमानदार की हार होती कभी बेईमान की जीत होने लगती। तो बोले मैं उस हाल में देखता था कि जैसे ही उस ईमानदार आदमी की जीत होती थी सारा हाल तालियों की गड़गड़ाहट से और भर जाता था, और जैसे ही कभी कभी उस बेईमान आदमी की जीत हो जाती तो सारे हाल में सन्नाटा खिंच जाता। हाँ, यह सुन देख करके मुझे ये लगा कि आज भी जो है लोगों के भीतर जो धर्म है उसके प्रति सम्मान की भावना तो है, और कभी अगर कहीं अधर्म का सम्मान होने लगे तो सन्नाटा खिंच जाता कि क्या हो रहा है। और वो कहते कि उसी दौरान बीच में किसी ने बाजू में और माचिस की काड़ी जलाई, उसकी रोशनी में मैंने अपने बाजू में देखा कि ये कौन है जो बहुत बार बार जब किसी बेईमान की हार होती है तो तालियां पीटता है, और ईमानदार की जीत होती तो बहुत जोर जोर से तालियां पीटता है। जब मैंने बाजू में देखा तो उस शहर का सबसे ज्यादा बदमाश आदमी था। तब मुझे और विश्वास हो गया कि कोई कितने भी बेईमान हो लेकिन ईमानदारी का सम्मान तो उसके भीतर है, वो भी बेईमानी को ठीक नहीं समझता। तब तो वो जब बेईमानी की हार होती तो जोर से ताली बजाता, ईमानदारी की जीत होती तो ताली बजाता। ये यही पद्धति आचार्य भगवंतों की रही कि पाप की छोटी सी बात खो भी उसका फल बड़ा करके कि देखो इतनो करो तो सो उसको फल इतनो मिलो, वैसा बताने पर जो है। और धर्मात्मा इसको सुन करके और क्या विचार करता कि अरे अपन को कभी पाप नहीं करना। और जब धर्म की प्रशंसा उसमें वर्णन में आती है तब उसको सुन करके लगता कि हाँ मैंने अच्छा किया जो धर्म धारण कर लिया है, मुझे इस तरह से धर्म धारण करने से और मेरा कल्याण होगा, ऐसा विचार उसके मन में आता है। ये सब चीजें प्रथमान युग में, अब तो भैया प्रथमान युग पढ़ने वाले विरले ही जीव हैं, बहुत थोड़े से लोग हैं जो पढ़ते हैं। अब तो कई लोग उस पर रिसर्च कर रहे हैं, समय पास में बहुत सारे पर्चा आते रहते हैं रिसर्च पेपर के, महाराज देखो तो इनमें कैसी कैसी बातें लिखी हैं, इनमें सो युद्ध को वर्णन दव है करो चाहिए महाराज देखो इनमें श्रृंगार की ऐसी चर्चा। अब हम जब सोचते हैं कि उनको जो उन संसार में जो उन श्रृंगार है वो नहीं दिख रहा, वो ग्रंथ में श्रृंगार दिख रहा, अपने भीतर जो आसक्ति है वा नहीं दिख रही, वो मैं दिख रही। अब क्या कहें उनके लिए, तो जिस जीव की जैसी होनहार हो वैसे अपन को उससे कोई वो नहीं है। लेकिन अपने मन में ये विचार करना कि नहीं, वहां पर श्री गुरु हमें श्रृंगार की तरफ प्रेरित करने के लिए नहीं कह रहे, बल्कि ये बताने के लिए कह रहे कि ऐसा नहीं समझना कि हम श्रृंगार के बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन तुम तो श्रृंगार का वर्णन करके विचलित हो गए और हम तो श्रृंगार के बारे में सारी बातें जानते हुए भी अनाशक्त हैं। हाँ, एक जगह लिखा कि भगवान तो सब समझते थे आदिनाथ भगवान, फिर का जरूरत होती दो दो ब्याह करे। हाँ, ऐसा लिखा उसमें। और शांतिनाथ भगवान, कुंतनाथ भगवान, नरहनाथ भगवान, ये तो चक्रवर्ती भी हते, 96,000 रानी अपार वैभव था। अरे जब तुम तीर्थंकर रहते पहले से तुम्हारी नक्की हती सब बातें, तो काय को विकार में जो प्रपंच करो। ऐसा ऐसा मन में उसमें लिखा हमने, तो कहते कि नहीं। उसमें जवाब भी क्या देते हैं आचार्य भगवंत, अपने मन से प्रश्न भी उठाते जवाब भी देते। प्रथमान योग में तो ऐसा जो है पढ़ो तो उसमें आनंद आता। तो कहते कि भगवान ये देखना चाह रहे थे कि मेरा आत्म बल बड़ा है कि जे भोग विलास की सामग्री बड़ी, जरा देखूं तो। अब लाओ मेरे पास, लाओ देखें ये मुझे फंसाती संसार में कि मैं इसे पार करके और जाता हूं। कल के दिन कोई जाने के लिए वे कच्छू ने तो सो छोड़ के चले गए, सब हतो जब छोड़ के चले गए। हाँ, तो सब है अपार वैभव है उसके बाद भी जो है, और देखें हमारा आत्मबल कैसा है कि ये वैभव हमें घेर पाता है कि नहीं घेर पाता है। ऐसा प्ररूपण सुन करके क्या लगता अपने लिए, मन में जो है हृदय गदगद हो जाता, रोमांचित हो जाता है। इसके लिए है वैराग्य की उत्पत्ति के लिए है, रत्नत्रय की प्राप्ति के लिए प्रथमान योग है। एक एक करके अपन सभी अनुयोगों की क्या प्रयोजन रहा और क्या उसके व्याख्यान की पद्धति रही ये अपन पढ़ेंगे, और अंत में अपन ये देखेंगे कि हमारी क्षमता कैसी है। पंडित पन्ना लाल जी स्वाध्याय कराते थे, हम कभी कभी उनके स्वाध्याय में अपने समय में पहुंच जाया करते थे। ये 1975-76 के समय की बात है, कभी गए दर्शनों को मोराजी में तो बैठ जाते थे, आधी अधूरी सभा में बैठ जाते। अब जानते कुछ थे नहीं उस समय, क्या जानते थे, कुछ नहीं जानते थे। अबे भी कछू है सुने समझ यू के हम जा कह रहे कि उस समय नहीं जाना थे, अब जानने लगी। अबे कछू नहीं, अबे तो अबे अबे कछू नहीं, इतने में तो कुछ नहीं होने वाला, अभी तो बहुत बहुत चाहिए। जब जाकर के आत्म कल्याण होगा तो उस समय वो हम देखते थे कि वो पहले सर्वार सिद्धि पढ़ाते पूजपा स्वामी की, और फिर उसके बाद में 15 मिनट बचा लेते थे तो फिर जरूर से पद्म पुराण पढ़े बांच करके सुनाते थे। बड़ा एक तरफ इतना कठिन ग्रंथ और दूसरी तरफ बिल्कुल सरल जो है पद्म पुराण, और उसमें जब सीता जी के को बन के भेजने की चर्चा आती थी तो पंडित जी जो है विपन्ना ऐसे माने विहल हो जाते थे सीता जी को जो है, और उनने भेज दिया रामचंद्र जी ने, तो वो चर्चा जैसे ही आती थी सो कहती अब कल बांझे, फिर अपने आंसू पहुंच लेती अब कल बांझे। ये क्या चीज है भाई है? ये है परिणामों की विशुद्धि के लिए स्वाध्याय करना। अपन भी जो है इस तरह अपने जीवन में और ज्ञान प्राप्त करें जिससे कि अपना जीवन अच्छा बने और अपना कल्याण कर सकें। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर के गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग दर्शन करने
वाला है।
जग जग विषयों में रचि पचि कर गावे सोता हो
अथवा वह शिव के निष्कंटक पथ में विषकंटक होता हो।
ओ अर्धनिशा का सन्नाटा वन में वनचारी चरते हो
तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो।
सप्त शैल नदी तट पर तरु तल वर्षा की झड़ियों में
समतारस पान किया करते सुख दुख दोनों की गड़ियों में
अंतर ज्वाला हरती वाणी मानो झरती हो फुल झड़ियां
भव बंधन तड़ तड़ टूट पड़े खिल जावे अंतर की कलियां।
तुम सादानी क्या कोई हो जग को दे दी जग की निधियां
दिन रात लुटाया करते हो शम सम की अविनश्वर मणियां।
हे निर्मल देव तुम्हें प्रणाम हे ज्ञान दीप आगम प्रणाम।
हे शांति त्याग के मूर्तिमान शिव पथ पंथी गुरुवर प्रणाम। मिथ्यातम
उसने अपने घर से 10-15 घर आगे किसी के यहाँ पर गाय भैंसों को खिलाने के लिए भूसे का बोरा रखा था वो चुराया था और वो भी ऐसे ही खींचते हुए ले आया था सो भूसे के बोरा में नीचे छेद था तो वहां से उसमें से भूसा गिरता रहा सो उसके घर तक भूसे की लाइन भी बन गई सो दूसरे दिन पकड़ा भी गया। होशियारी से करना चाहिए थी चोरी क्या मन में तो यही आ रहा होगा तो बुद्धि रहा होगा अच्छे से नहीं किए उसने नहीं ऐसा विचार अब नहीं आना चाहिए। अब तो ये आना चाहिए कि मैं ऐसी होशियारी नहीं सीखूं ऐसी होशियारी करके बहुत अपना अहित कर लिया। होशियारी तो वो है कि जिसमें मैं इस तरह के कामों से मुक्त हो सकूं। अभी तो इस तरह के कामों में लिप्त रह करके अपने को होशियार मानते हैं अपन अपने को समझदार और बुद्धिमान मानते हैं ऐसे कामों में लिप्त रह करके भी अब मन में ये भावना आनी चाहिए कि ऐसे कामों से मुक्त होने में मैं अपनी चतुराई मानूं अपनी समझ उस समय मानूंगा कि हाँ श्रेष्ठ है मेरी मेरा ज्ञान। अब लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई 2.5-3 रुपए का पूरा भरा हुआ बोरा बिकता है और भी सामान था कोई कीमती चीज चुराई होती। लोगों के मन में ये विचार आया तो उससे पूछा कि तुमने यही क्यों चुराया और भी सामान था उनके यहां पर कोई कीमती सामान चुरा लेते तो उसने मालूम क्या जवाब दिया भैया रोज पंडित जी की सभा में कर्म सिद्धांत के बारे में मैं सुनता हूं मैंने अपने 2 जून के भोजन में से 1 जून का भोजन रखा कुछ दिन तक फिर हम दोनों को वह 1 जून का भोजन भी मिलना बंद हो गया हम पानी पर रह गए। आज तो जब बेटे ने दूध के लिए जिद की और मेरे पास पैसे नहीं थे तो दूध के लिए मुझे इंतजाम करना था तब मेरे मन में यही विचार आया कि अब और कोई उपाय नहीं है जब कमाऊंगा 4 पैसे तो उसका ज्यों का त्यों बोरा चुकता कर दूंगा पर अभी तो उठा के ले आऊं सो उठा के ले आया 3.5 रुपए चाहिए थे इसलिए 3.5 का ही सामान चुराया मुझे अधिक तो चाहिए नहीं थे। पंडित जी ने कहा कि जितनी तीव्र कषाय के साथ में कोई कार्य करोगे उतना गाढ़ा कर्म बंधेगा मुझे कर्म बंध से भय है मैं ऐसे तीव्र कर्म नहीं बांधना चाहता। कर्म सिद्धांत पढ़ा हुआ जीवन में
आ भी गया उसके, और हम कितना ज्यादा जानते हैं। अभी कई अभ्यास करने वाले होंगे जो आठ कर्मों का, किस कर्म का कहां तक उदय है, कहां तक बंद है, कितनी सत्ता कहां तक है, ये सब राई रत्ती जानते होंगे, लेकिन फिर भी राग द्वेष में कमी नहीं आती है। तो वो ज्ञान हमारे जीवन को ऊंचा नहीं उठा पाएगा। भैया, मेरे कहने का आशय सिर्फ इतना है, हम निरंतर एक ऐसा ज्ञान हासिल करें जो हमें हमारे जीवन को ऊंचा उठाने में कारण बने, हमारी आत्म संपदा हमें दिला सके, और हमें स्वप्न से जागृत कर सके, सत्य का परिचय करा सके। स्वप्न और जागृति दोनों ही हमारे जीवन में हैं। कैसे? रात में सो जाते हैं उसको हम स्वप्न मानते हैं, सुबह जाग जाते हैं उसे हम जागृति मानते हैं। नहीं, ये तो सभी जीव के साथ है। वास्तव में स्वप्न क्या है? ये संसार और इस संसार में मेरा राग द्वेष, यह स्वप्नवत ही है। जागृति तो तब है जब मेरे भीतर वीतराग भाव जागृत हो, वो जागृति है। वरना तो यहां चाहे आंख खुली हो और चाहे आंख मूंदी हो, सब कुछ स्वप्नवत ही है। यानी जिसे प्राप्त करने की इच्छा तो होती है, पर जो प्राप्त नहीं होता वही तो स्वप्न है। मैं कितनी चीजों को प्राप्त करने की इच्छा करता हूं, कहां प्राप्त होती है? कुछ चीजों का संयोग होता है, लेकिन संयोग होते होते और वियोग की पीड़ा सहन करना पड़ती है। तो ये स्वप्न ही तो है। जैसे सपने में मूरख राजपद पायो, उठ मूरख रुदन मचायो, वही स्थिति हमारी होती है। कुछ प्राप्त होता है और फिर वह भी स्वप्नवत, जैसे नींद खुलने पर जो जो रात में देखा था वो सब सुबह हाथ कुछ नहीं आता, सारी रात जमीन पर लेटे लेटे और हम स्वप्न देखते रहे कि किसी महल में राजसी ठाट बाट के साथ गद्दी पर सोए हुए हैं, और सुबह अगर नींद खुल जावे तो कहां राजपाट है और कहां गद्दी है, वही ताट है और वही जमीन है। क्या मिला? स्वप्न से प्राप्त नहीं होता। स्वप्न से प्राप्ति का भ्रम और आश्वासन अवश्य होता है। ऐसे स्वप्न को मैं तोड़ सकूं, ऐसा ज्ञान मैं हासिल कर लूं, मैं जागृत हो जाऊं एक बार इस तरह से कि ये सारी चीजें स्वप्नवत मालूम पड़ने लगे, ताकि मुझे फिर ये आशक्त न करें। स्वप्न टूट जाने पर जैसे हंसी आती है, ऐसे ही इन संसार के संयोग वियोग को देख करके मैं और प्रसन्न ही बना रहूं, संयोग में ज्यादा हर्ष न करूं, वियोग में विषाद न करूं। क्या ऐसी कोई समझ हमारे भीतर, ऐसा कोई ज्ञान हमारे भीतर हासिल नहीं कर सकते हम? कर सकते हैं। एक राजा अपने एक ही पुत्र की बीमारी से अत्यंत दुखी है, उसके सिराने बैठा है, सेवा कर रहा है। राज वैद्य तो सेवा कर ही रहे हैं, राजा स्वयं, रानी साहबा स्वयं उसके सिराने बैठी हैं सेवा में। एक दिन दो दिन निकल गए हैं, बेहोशी टूट ही नहीं रही है। एक बार आंख खोल के देख तो लेता राजकुमार तो पिता को शांति हो जाती, लेकिन बेहोशी नहीं टूट रही, राजा को नींद ही नहीं आती है। तीसरे दिन अचानक राजकुमार की आंख खुलती है और वो पानी मांगता है। सब में प्रसन्नता की लहर दौड़ जाती है कि राजकुमार ने आंख खोली है, पानी मांगा है, अब तो स्वस्थ हो जाएगा। रानी साहबा भी राजा को कहती हैं कि तीन दिन से तुम्हारी आंख भी नहीं लगी, अब तो राजकुमार ठीक है, थोड़ा विश्राम कर लो, यहीं बैठे बैठे ही सही, मैं हूं अभी, मैं देख रही हूं, मैं संभाल लूंगे। राजा थोड़ा सा निश्चिंत होकर के और टिक करके जैसे ही नींद लेता है, उसे एक स्वप्न दिखना शुरू होता है। स्वप्न में वो जितना बड़ा राजा अभी है उससे भी बड़ा राजा होता है, और स्वप्न में उसके एक पुत्र नहीं 12 पुत्र हैं, अपार वैभव है, वो उसी सबके बीच में आनंदित है। और इतने में ही उसे किसी की चीख सुनाई पड़ती है तो नींद खुल जाती है। रानी साहबत चीख करके उससे जगाती हैं कि उठो, क्षण भर पहले जिसने आंख खोल के पानी मांगा था अब जीवन भर आंख नहीं खोलेगा ऐसा लग रहा है। और राजा साहब ने आंख खोल करके राजकुमार की मृत देह को देख करके जोर से ठहाका लगाया तो सब शक्ति में आ गए कि लगता है इस दुख को न झेल पाने की वजह से राजा पागल हो गए। तो सबने हिलाया, समझाया कि क्या करते हो आप, हंस रहे हो, रोने का अवसर है। उसने कहा कि नहीं, अब समझ में आया कि वास्तविकता क्या है। वो जो सपन में 12 पुत्र थे, अपार वैभव था, जो तुम्हारे चीखने से नींद खुलने पर टूट गया उसके लिए रो, या कि एक जो ये सामने है जिसका कि मरण हो गया उसके लिए रो, अब किसी के लिए न रोऊंगा, अब मैं अपनी प्रसन्नता को निरंतर बनाए रखूंगा। अब मुझे ये समझ पैदा हो गई है कि या तो खुली आंख हो चाहे बंद आंख हो, सारी चीज स्वप्नवत ही है, मिलती मिलती मालूम पड़ती है, लेकिन अगले क्षण ही वियोग को प्राप्त हो जाती। ये वास्तविकता का बोध हम चाहें तो कर सकते हैं। रोज रोज ऐसा अभ्यास करने पर होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। किसी विरले को होता होगा या कोई ऊपर से ऐसे ही टपकता होगा जिसको होता होगा, नहीं, हम और आप सबके भीतर ऐसी सामर्थ्य है। बस इतना है कि पुरुषार्थ जिस दिन हम अपना जागृत कर ले उस दिन हम आसानी से उस चीज को प्राप्त कर सकते हैं, अपनी उस आत्म संपदा को हम सहज रूप से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उसे प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि जो भी हम ज्ञान हासिल करें वो श्रद्धा पूर्वक करें और अपने आचरण को परिवर्तित करने की दृष्टि से करें। बस 4 बातें जाने, 40 ना भी जाने, लेकिन 4 बातें भी वो जाने जिससे कि मेरा कल्याण हो सके, प्राणी मात्र का कल्याण हो सके। वो जानकारी ही श्रेष्ठ है। और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है वही जानकारी, वही समझ हमारे जीवन को आगे बढ़ाती, क्योंकि श्रद्धा ज्ञान के साथ आने वाले अहंकार को तोड़ देती है। अगर अकेला ज्ञान होगा तो अहंकार के बिना नहीं रह सकता, और अगर श्रद्धा पूर्वक ज्ञान हासिल किया जाएगा तो अहंकार आएगा नहीं। और साथ में अगर श्रद्धा पूर्वक ज्ञान हासिल किया होगा तो जीवन को परिवर्तित किए बिना नहीं रहा होगा, रहेगा। ये कसौटी है इस बात की। हम लोग अपने उस ज्ञान को इस कसौटी पर कस करके देखें, कितना तो हम ज्ञान हासिल करते हैं, कितना तो पढ़ते लिखते हैं, कितना तो कितनी बातें सुनते हैं, जानते हैं, लेकिन कसौटी पे कस के देखें कि अगर मैंने श्रद्धा के साथ इन चीजों को हासिल किया है तो ये मेरे जीवन को परिवर्तित जरूर करेंगे। महाराज कह रहे थे कि कोई हमारी बात नहीं मानता, पर मैंने पिछले दिनों में ये देखा है कि जिनने बात मानी है उन्होंने अपने जीवन को बदलने पर ही बात मानी है। बात तो सब मानते हैं लेकिन जीवन बदल करके बात को मानना युधिष्ठिर की तरह, उसमें तो कुछ ही लोग पास हो पाते हैं, पर हुए हैं लोग पास। मैं बिल्कुल भी निराश नहीं हूं, मैं इस आशा और विश्वास से भर करके जाऊंगा आचार्य महाराज की आज्ञा के अनुरूप, उनके आदेश के अनुसार जाऊंगा, लेकिन इस आशा और विश्वास से भर के जाऊंगा जब भी जाऊंगा कि लोग मेरी कही हुई बात को आज नहीं तो कल, कल नहीं तो इस जीवन के अंत क्षणों में भी अगर याद आ जाएगी तो अपने जीवन को परिवर्तित करने में देर नहीं करेंगे। हमारे अपने जीवन में ये सब बातें हैं, हमारे जीवन को परिवर्तित करने के लिए हैं। हमारे अपने संस्कारों की प्रबलता इतनी ज्यादा है कि हम उन्हें सहसा तोड़ नहीं पाते हैं, पर तोड़ने की भावना अगर आ जाए उन खोटे संस्कारों को तो कोई नहीं रोक सकता। फिर ये समझ ये ज्ञान हमारे उन खोटे संस्कारों को तोड़कर हमारे भीतर श्रेष्ठ संस्कार लाने में कारण बनेंगे। हमारे और दूसरे के कल्याण में हमारा ज्ञान कारण बनने लगेगा। एक छोटी सी घटना कहूं और हमारे जीवन में आज हमने दो बातें सीख ली कि अब जो भी समझ हम पैदा करेंगे अपने भीतर वो समझ हमारे जीवन को ऊंचा उठाने वाली होगी और इतना ही नहीं हमें हमारी अपनी आत्म संपदा से परिचित कराने वाली होगी। धर्म और धर्मात्मा के प्रति रुचि होना ये हमारे भीतर जागृत होगा और इन दोनों भावनाओं के माध्यम से हम अपने जीवन को आसानी से ऊंचा उठाएंगे। एक राजा बीमार पड़ गया, अस्वस्थता के चलते किसी ने सलाह दी कि आपको तो किसी बालक का मांस खाने पर ही इस रोग से मुक्ति मिल सकेगी। राजा थोड़ी देर तो मुश्किल में पड़ा, लेकिन अगर हमारे पास समीचीन ज्ञान नहीं है तो हमारे अंदर भावना क्या आएगी कि हमारा जीवन बचना चाहिए, दूसरे का चाहे नष्ट भी हो जाए। और राजा के भीतर भी ऐसी ही भावना आ गई, मंत्रियों से कहा कि उपाय करो, इतना ही पर्याप्त है। मंत्रियों ने सारे शहर में मुनादी करा दी कि जो भी अपने बालक को बेचना चाहे राजा उससे मोह मांगी कीमत पर खरीदने तैयार है। और एक व्यक्ति तैयार हो गया कि मेरे पुत्र के वजन की और पुत्र के ही ऊंचाई की सोने की प्रतिमा अगर कोई उसे दे तो वो अपने पुत्र को दे सकता है। ये घटनाएं कितनी सच्ची हैं या नहीं है इससे अपन को मतलब नहीं है। ऐसा ही हमारे अपने जीवन में कभी घटित हो तो हम सावधान हो जाएं, सिर्फ इसके लिए है। और उतना स्वर्ण उसे दे करके उस बालक को राजा ने प्राप्त कर लिया। पुरोहित और न्यायाधीशों से पूछा गया कि आपका क्या कहना है, इस बालक के को नष्ट करके इसका मांस राजा को देने में कोई हानि तो नहीं है, आपका न्याय क्या कहता है? तो जो न्यायाधीश थे उन्होंने भी कहा कि राजा का जीवन अधिक कीमती है क्योंकि वह प्रजा का पालन करता है, इसलिए अगर प्रजा का एक व्यक्ति अपने प्राण देकर के भी राजा को बचाए तो इसमें कोई भी अनुचित नहीं है। ये भी हो गया और राजा ने भी ऐसा सुन करके आदेश दे दिया, तलवार उठ गई उस बालक के ऊपर और तलवार गिरे इससे पहले बालक बहुत जोर से ठहाका लगा करके हंसा। तो तलवार गिराने वाले का हाथ भी रुक गया और राजा भी सकते में आ गया। मरण से पहले कोई इस तरह ठहाका लगा करके हंसे, कोई ना कोई कारण है। राजा ने कहा कि ठहरो, इससे पहले कि इसे मारा जाए मेरे स्वास्थ्य लाभ के लिए मैं इससे पूछना चाहूंगा कि ये क्यों हंसा। पूछा उससे तो उसने कहा कि जो माता पिता अपने प्राण देकर के भी अपने बालक की रक्षा करते हैं उन्होंने भी मुझे कुछ थोड़े से पैसों में बेच दिया, ये देख करके मुझे हंसी आई, थोड़ी हंसी आई, फिर मेरी हंसी और बढ़ गई जब न्यायमूर्ति कहलाने वाले न्यायाधीश ने ऐसा निर्णय दे दिया कि प्रजा पालक की